ये आकाशवाणी हैदराबाद है, अब आप अयाज अहमद से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मुल्क की दिफाई बरामदात मौजूदा 24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2029 में 50,000 करोड़ रुपए तक पहुँचेंगी। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से गुजारिश की कि दिफाई अराजियात रियासती हुकूमत को मुंतकिल की जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की जानिब से शुरू करदा वोट चोर मुहिम का कल से रियासत में आगाज होगा। मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी ने खसूसी मुहिम के तहत मुल्क भर में ई वेस्ट रिसाइकिलिंग ड्राइव का आगाज किया। अब खबरों की तफसील। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मुल्क की दिफाई बरामदात मौजूदा 24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2029 में 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचेंगी। उन्होंने कहा कि एक दहाई पहले दिफाई बरामदात सिर्फ 600 करोड़ रुपए थी। वजीर दिफा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान दिफाई मसनूआत में दुनिया के लिए फैक्ट्री बन जाएगा। वजीर दिफा ने हैदराबाद में 3 रोज़ा जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस दौरान मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। अपने खिताब में राजनाथ सिंह ने कहा कि दिफाई शोबा खुद इनेसारी के मकसद के हुसूल के साथ आत्मनिर्भर भारत बनने की राह पर गामजन है।
हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेना भी आने वाले समय में निश्चित रूप से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से हम इस उद्देश्य को जल्द ही हासिल करेंगे।
राजनाथ सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने इस बात को मुमकिन बनाया कि दिफाई निजाम में घरेलू पुर्जे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट में 64% पुर्जे हिंदुस्तान में बने हैं। वजीर दिफा ने इस मौके पर जैन कम्युनिटी की तारीफ की और कहा कि यह तबका सख्त मेहनत, लगन, कुर्बानी और मुल्क के तई जज्बे के साथ हर शोबे में अपनी महारत पेश करता है। इससे कबल मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने साल 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के हुकूमती इकदाम में अपना रोल अदा करने की जैन कम्युनिटी से अपील की। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट व हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से गुजारिश की कि हैदराबाद और सिकंदराबाद में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए दिफाई अराजियात रियासती हुकूमत को मुंतकिल की जाए। वजीर दिफा को रवाना करता एक मकतूब में पूनम प्रभाकर ने अवामी इस्तेमाल के लिए बास अराजियात को हवाला करने की उसूली मंजूरी देने पर मरकज का शुक्रिया अदा किया। रियासती वजीर ने कहा कि दिफाई अराजियात के हसूल से जुड़वा शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती ज़रूरियात की तकमील में मदद मिलेगी और शहरियों को मज़ीद बेहतर सहूलियात पहुँचाई जा सकेंगी। पूनम प्रभाकर ने कंटोनमेंट की जानिब से तेलंगाना हुकूमत को यूज़र चार्जेस के तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए बकाया भी जल्द अदा करने पर जोर दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की जानिब से शुरू करदा वोट चोर मुहिम अब रियासत में भी शुरू की जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से कल से इस मुहिम का रियासत भर में आगाज किया जाएगा। कांग्रेस के रियासती सदर की हैसियत से कामयाबी के साथ 1 साल की तकमील पर महेश कुमार गौड़ ने आकाशवाणी से खास बातचीत करते हुए कहा कि इस मुहिम के दौरान पार्टी कारकुनान रियासत के हर मंडल और हर गांव जाएंगे और बीजेपी की जानिब से की गई मुबैना वोट चोरी से लोगों को वाकिफ करवाएंगे और कम से कम 10 वोटर्स की दस्तखत हासिल करेंगे। महेश कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने तेलंगाना में भी वोट चोरी करते हुए पार्लियामेंट की 8 सीटें जीती हैं।
महाराष्ट्र గాని కర్ణాటక గాని గుజరాత్ లో గాని పరిశీలిస్తే విపరీతమైనటువంటి ఓట్ల హేరాఫేరీ జరిగింది. దానివల్ల మోడీకి వెసులుబాటు అయింది. ఆ కార్యక్రమాన్ని దేశవ్యాప్తంగా సీరియస్ గా తీసుకున్నాం. తెలంగాణలో కూడా దసరా రావడం వల్ల స్లో అయింది. రేపు మీనాక్షి గారు వస్తున్నారు, మా ఇన్ఛార్జ్ గారు. వారితో పాటు జూమ్ మీటింగ్ ఉంది. ప్రతి గ్రామంలో కనీసం 10 మంది ఓట్చోరి మీద సంతకాలు పెట్టి పంపిస్తారు.
इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की जानिब से शुरू करदा फलाही स्कीमों से अवाम खुश हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 62,000 करोड़ रुपये मालियत के नौजवानों को जहन में रखकर शुरू करदा इकदाम का आगाज़ करेंगे। मुल्क भर में 1,000 गवर्नमेंट ITIs को अपग्रेड करने के लिए वज़ीर आज़म PM सेतु लॉन्च करेंगे। वज़ीर आज़म की एक योजना का भी आगाज़ करेंगे जिसमें 5 लाख ग्रेजुएट्स को 2 साल तक के लिए महाना 1,000 रुपये अलाउंस दिया जाएगा। वोकेशनल तालीम और मौजूदा दौर के तकाज़ों के कोर्सेज की तालीम के लिए बिहार में जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का भी वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी हैदराबाद से सुन रहे हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को ऐसी लड़ाई के तौर पर याद रखा जाएगा जिसमें तेजी से मकासद का हासिल किया गया और इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। 93वें एयरफोर्स डे तकरीबात के ज़िमन में नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया और इस ऑपरेशन के दौरान 4 से 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को तबाह किया गया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मुसल्ह अफवाज को वाज़ हिदायत और मैंडेट दिया गया था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी फजाइया ने 9 में से 2 अहदाफ को निशाना बनाते हुए इसमें अहम किरदार अदा किया।
We are seeing what is happening in the world, the two wars that are going on. There's no talk about termination, but we could make them reach a stage where they ask for a ceasefire, ask for termination of hostilities. And also we took a call as a nation to terminate those hostilities because our own objectives were met. I think this is something that the world needs to learn from us.
اس موقع پر فضائیہ کے سربراہ نے اس بات پر زور دیا کہ مستقبل قریب میں بھی جنگ کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سالانہ سماجی و ثقافتی پروگرام الائی بلائی کا 20 ایڈیشن آج نمائش میدان نامپلی حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر منعقد ہوا۔ الائی بلائی فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن بنڈارو وجے لکشمی نے اس ایونٹ کا انعقاد کیا۔ ہریانہ کے سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ کی دختر وجے لکشمی نے مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا اور تلنگانہ کے ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا۔ اس تقریب میں تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما، سابق نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو، ریاستی وزیر کومن ریڈی وینکٹ ریڈی، سابق گورنر ودیا ساگر راؤ، ریٹائرڈ چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا، بی جے پی ایم پی کے لکشمن، تلنگانہ کانگریس کے ریاستی صدر مہیش کمار گوڑ، سی پی آئی لیڈر نارائنا، سی پی آئی کے ریاستی سیکرٹری سامبا شیوا راؤ، پروفیسر کوتنڈا رام اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ دتاتریہ نے روایتی کھنڈوے سے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس سال آپریشن سندور خاص توجہ کا مرکز رہا۔ اس دوران میجر جنرل اجے مشرا کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے ذات، مذہب اور طبقاتی بنیادوں پر تفریق پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اتحاد کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے آج 11 سال مکمل ہوئے ہیں۔ سال 2014 میں آج ہی کے دن وجے دشمی کے موقع پر آکاشوانی پر من کی بات کا پہلا ایپیسوڈ نشر کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں پروگرام کے 126ویں ایپیسوڈ سے خطاب کیا۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ من کی بات صرف ایک ریڈیو شو نہیں ہے بلکہ یہ سماجی و ثقافتی تبدیلی کی علامت ہے جو ملک کے ہر گوشے تک پہنچتا ہے۔ مرکزی وزیر کوئلہ جی کشن ریڈی نے خصوصی مہم کے تحت ملک بھر میں ای ویسٹ ری سائیکلنگ ڈرائیو کا آغاز کیا۔ اس مہینے کی 31 تاریخ تک یہ مہم جاری رہے گی۔ مرکزی وزارت کانکنی کے مطابق اس مہم کے دوران ای ویسٹ جیسے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، پرنٹرز اور دیگر الیکٹرانک آلات کو منظم طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے گا۔ حیدرآباد کے فلک نما پیلس کے قریب روڈ اوور برج کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے اس برج کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایم آئی ایم کے صدر اسد الدین اویسی، راجیہ سبھا ممبر انل کمار یادو، ارکان اسمبلی محمد مبین، میر ذوالفقار علی اور دیگر لیڈران موجود تھے۔ آخر میں بلیٹن کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ ملک کی دفاعی برآمدات موجودہ 24,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر سال 2029 میں 50,000 کروڑ روپے تک پہنچیں گی۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے وزیر دفاع سے گزارش کی کہ دفاعی اراضیات ریاستی حکومت کو منتقل کی جائے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی کی جانب سے شروع کردہ ووٹ چور مہم کا کل سے ریاست میں آغاز ہوگا اور مرکزی وزیر کوئلہ جی کشن ریڈی نے خصوصی مہم کے تحت ملک بھر میں ای ویسٹ ری سائیکلنگ ڈرائیو کا آغاز کیا۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔